सुबह की हल्की धूप खिड़की की जाली से छनकर कमरे में उतर रही थी, लेकिन कमरे का माहौल अब भी रात जैसी भारी चुप्पी से भरा था। साड़ी की टुकड़े, टूटी चूड़ियां और बिस्तर की सिकुड़ी चादरें सब गवाही दे रहे थे कि रात ने यहां कोई तूफान देखा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। खक ठक। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने धीरे से आंखें खोली। बिस्तर के बाईं ओर श्यामली अब भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए और होंठों पर हल्की थरथराहट बाकी थी। वो उठकर दरवाजे तक गया। लकड़ी के भारी दरवाजे की सांकल हटी। बाहर नौकरानी खड़ी थी, साड़ी की पल्लू सिर पर, आंखें झुकी हुईं। मालिक, माताजी ने बुलाया है, कह रही थी बहू को नीचे भेजिए, आज बहुत सारी रस्में करनी हैं। विश्वनाथ ने एक नज़र पलंग की ओर डाली, फिर ठंडी आवाज में बोला, वो अभी तक सो रही है। नौकरानी ने हल्का सिर हिलाया, मैं बता दूंगी माताजी को। वो पलटी और सीढ़ियां उतर गईं। नीचे हवेली की रसोई और प्रांगण में चहल पहल थी। माताजी, सावित्री देवी, लगभग 65 की उम्र, अब भी सीधी पीठ, घुटनों में लोहे की रॉड, लेकिन आवाज आज भी तलवार जैसी तेज। वो दरबार हॉल में बैठी थी, पान की डिब्बी पास रखी हुई और हाथ में रुद्राक्ष की माला। नौकरानी उनके पास पहुंची। माताजी, वो बहू तो अब तक सो रही है। सावित्री देवी की आंखों में गुस्से की परछाई दौड़ गई। सो रही है? उनका स्वर जैसे कड़कती बिजली। आज पहली सुबह है उसकी और ये राजकुमारी सो रही है? किस घर में आई है वो जानती है? उन्होंने गुस्से में माला जमीन पर पटक दी। बोल देना उसे, आज से छूट नहीं मिलेगी। इस हवेली में बहुओं को सज धज कर रहना पड़ता है और उठना तो पहली मुर्गे से पहले होता है। उसी वक्त ऊपर कमरे में श्यामली नींद में थी, लेकिन करवटें बता रही थीं कि उसका शरीर थक चुका था। उसकी पीठ पर नीले निशान थे और आंखों के नीचे हल्का काजल फैला हुआ। विश्वनाथ बगल में बैठा उसे देख रहा था, फिर तैयार होने लगा, कोट वगैरह पहनने लगा। वो अब भी बेतहाशा सुंदर लग रही थी, लेकिन उस सुंदरता में अब मासूमियत से ज्यादा थकान और सौंपे जाने की लाचारी थी। उसने अपने हाथों से विश्वनाथ के हाथ पर सहलाया और बुदबुदाया, आपने कल कुछ नहीं कहा। तभी विश्वनाथ ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अब ज्यादा मत सोना, नीचे जाओ, आज की रस्में हैं और माँ वैसे भी किसी को माफ नहीं करती। श्यामली ने धीरे से आंखें खोली, गला सूखा था लेकिन बोली, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। वो मन में सोची कि विश्वनाथ उससे इस तरह क्यों बात कर रहा है। विश्वनाथ उससे थोड़ा रूड अंदाज में बता किया था। कुछ देर बाद नीचे दरबार हॉल में बड़े थाल सजे हुए थे, पीतल की परातें, लाल सिंदूर, हल्दी, मिठाई और एक बड़ी चांदी की जोड़ी जिसे नई दुल्हन को पहनना था। सावित्री देवी सिर पर लाल चुनरी, गले में मोटी सोने की माला अब सामने बैठी थी। श्यामली सीढ़ियां उतरते हुए आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें अब भी रात की परछाइयों से भरी हुई थीं। साड़ी पूरी ढकी हुई, गहनों से लदी, लेकिन चाल में थकान की सी लचक। सावित्री देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बहू, ये हवेली कोई आरामगाह नहीं है, यहाँ काम होता है, औरतें दिन में 4 बार हाथ धोती हैं, आराम करने नहीं बैठती। श्यामली ने सिर झुका दिया। जी माताजी, आज कई रस्में हैं, रसोई में पहला भोग, आंगन में तुलसी पूजन और फिर देवकक्ष में पूजा। और हाँ, हमारे खानदान की परंपरा है, पहली सुबह बहू नहाकर तुलसी के नीचे दिया जलाए और अपने पति के लिए व्रत रखे। श्यामली कुछ कहती उससे पहले सावित्री देवी ने रुकाया, रात जो भी हुआ हो आज से बहू को बांध कर रखना होगा, इस घर की इज्जत बहुओं की चाल में दिखती है। आंगन में तैयारियां हो चुकी थीं। श्यामली अब तुलसी चौरे के सामने बैठी थी, हाथ में तेल का दिया, माथे पर सिंदूर और होठों पर बेमन की मुस्कान। पीछे खड़ा था आर्यन, चुपचाप बिना बोले। वो उसे देखता रहा, वही लड़की जिसके लिए वो कॉलेज में शायरी लिखता था, वही जो अब उसके बाप की दुल्हन बन चुकी थी। उसका दिल जल रहा था, लेकिन चेहरा पत्थर हो चुका था। अचानक श्यामली ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों की आंखें मिली, सिर्फ एक पल, लेकिन उस एक पल में 1000 कहानियां घुल गईं। और अब नई जंग शुरू होने वाली थी, रिवाजों से, हवेली से और सबसे बड़ी उस रिश्ते से जिसकी पहली रात में आग थी और सुबह में राख।